राजवंश विलास से बाहर निकलने के बाद इशिका सीधे दिशांग के पास अपने ऑफिस गई, जहां उसने कुछ जरूरी काम निपटाए। काम हो जाने के बाद उसे क्वींस होटल पहुंचना था। जैसे ही वो बाहर जाने लगी, दिशांग उसके पीछे आया। वो भी कहीं जाने के लिए पहले से तैयार था। दिशांग ने इशिका से कहा, मुझे भी क्वींस होटल ही पहुंचना है, कुछ देर बाद मेरी मीटिंग है, तो सोचा आपके साथ ही चलता हूँ। चलो अच्छा है, मुझे कैब नहीं लेनी पड़ेगी, आज ड्राइविंग मैं करूँगी, इशिका ने मुस्कुराकर कहा और कार की चाबी लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। दिशांग उसे चाबी देने से थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आर यू श्योर आप ड्राइविंग करना चाहती हैं? आई मीन मैं देख लूँगा। इशिका का हाथ अभी भी आगे था। उसने दिशांग को घूरते हुए सिर हिलाया, तो मजबूरी में दिशांग को चाबी उसके हाथ पर रखनी पड़ी। अगले ही पल वो दोनों गाड़ी में थे और दिशांग की स्पोर्ट्स कार इस वक्त 40 की स्पीड पर चल रही थी। दिशांग ने अपने चेहरे को ढक लिया था, उसे शर्म महसूस हो रही थी। कोई भी स्पोर्ट्स कार उसकी फुल स्पीड के लिए खरीदी जाती थी और इस वक्त इशिका उस गाड़ी को इतना धीरे चलाकर उस गाड़ी की इंसल्ट कर रही थी। आसपास चलने वाली दूसरी गाड़ियां भी उससे आगे निकल गई थीं। आखिर में दिशांग ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, इतने धीरे गाड़ी कौन चलाता है, वो भी स्पोर्ट्स कार को, अब तक हम पहुंच चुके होते। तुम जानती हो ना मैं एनीमिक हूँ, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया या थोड़ी सी भी चोट लग गई तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। चुपचाप बैठे रहो, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो गाड़ी से उतरो और कैब ले लो, इशिका ने सिर हिलाकर कहा। इशिका की कंपनी से क्वींस होटल उस गाड़ी से लगभग 20 मिनट के रास्ते में आराम से आ सकता था, लेकिन इशिका पूरा 50 मिनट लगाकर वहां पर पहुंची थी। इशिका गाड़ी से बाहर निकली, उसने देखा दिशांग अभी भी अंदर बैठा हुआ था। इशिका ने झुककर अंदर की तरफ देखा और दिशांग से बोली, मिस्टर राठौर आपको बाहर नहीं निकलना, मैं दूसरी मीटिंग में जा रहा हूँ, दिशांग ने कहा, तो इशिका ने उसे गाड़ी की चाबी दे दी थी। दिशांग को बाय बोलने के बाद इशिका लिफ्ट के पास आ गई थी। वो लिफ्ट के आने का इंतजार कर रही थी, तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज दी, इशिका सिंघानिया क्या ये तुम हो? इशिका ने पलट कर देखा तो वहां उसकी क्लासमेट चरित सक्सेना खड़ा हुआ था। चरित मुस्कुराते हुए उसके पास चलकर आया और बोला, हाँ ये तुम ही हो, इशिका ने जवाब दिया और उसे हल्का मुस्कुराकर हेलो कहा। कॉलेज में इशिका किसी से बात नहीं करती थी, सबको यही लगता था कि वो ज्यादा खूबसूरत है तो वो किसी को अपने लायक नहीं समझती, अक्सर पीछे से सब उसे घमंडी कहकर बुलाते थे। इशिका चुपचाप वहां खड़ी लिफ्ट के आने का इंतजार कर रही थी, जबकि चरित बोला, तुम्हें अभी भी कोई परमानेंट जॉब नहीं मिली क्या? हमारी ग्रेजुएशन पूरे हुए 3 महीने बीत चुके हैं। इशिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन देखकर चरित बोला, मैंने तुम्हें गाड़ी से उतरते हुए देखा था, तुम ड्राइवर का काम करती हो ना? चरित ने उसे गलत समझ लिया था। इशिका कुछ कहती उससे पहले चरित ने कहा, लेकिन मैंने तो जॉब ढूंढ ली है, तुम्हें पता है मैं किसकी कंपनी के साथ जुड़ा हूँ और हमारे बॉस कौन है? इशिका ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया, तो चरित ने कहा, मेरे बॉस डॉक्टर मर्चेंट है, सुनकर झटका लगाना। इशिका को समझ नहीं आया वो उसे क्या जवाब दे, चरित हमेशा से थोड़ा ज्यादा बोलता था। उसने खुद ही आगे कहा, तुम्हें पता है इशिका, तुम जिसके लिए ड्राइव करती हो मिस्टर दिशांग राठौर, वही हमारे बॉस हैं, हमारे रियल बॉस डॉक्टर मर्चेंट है, लेकिन फिलहाल सारा काम दिशांग राठौर ही संभाल रहे हैं, वहां मैंने काफी कुछ सीखा है। इशिका बस उसकी बात पर हाँ या ना में सिर हिलाई जा रही थी। कुछ ही देर में लिफ्ट आ गई तो वो दोनों अंदर आ गए थे, जिसके अंदर भी चरित लगातार डॉक्टर मर्चेंट की तारीफ किए जा रहा था। अचानक ही चरित ने इशिका से कहा, अच्छा इशिका तुम्हें जॉब नहीं मिली क्या, पर तुम्हारे ग्रेड्स ठीक ठाक थे क्या? मैं तुम्हारे बारे में बात करूं, तुम्हें जॉब मिल सकती है। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, इशिका ने जवाब दिया। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, मिस्टर राठौर ने कहा है कि अगर हमें कोई यंग टैलेंट दिखे तो हम उसे कंपनी में रेफर कर सकते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं कि हम व्हाट्सएप पर एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं ताकि इस बारे में आगे बात कर सकें, तुम सोचना इस बारे में, चरित ने कहा और अपना व्हाट्सएप QR निकालकर इशिका के आगे कर दिया था। इशिका को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि आयशा की वजह से उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। हिचकिचाते हुए इशिका ने उसका कोड स्कैन किया और उसका नंबर सेव कर लिया था। इशिका ने जब चरित को मैसेज रिक्वेस्ट भेजी तो वो हंसते हुए बोला, तुम्हें पता है कि तुम्हारी और डॉक्टर मर्चेंट की प्रोफाइल पिक्चर बिल्कुल एक जैसी है? हाँ ये एक सनफ्लावर है, इशिका ने कहा। इशिका का नंबर सेव करने के बाद चरित को पता चला कि वो पहले से ही उसके साथ किसी ग्रुप में ऐड है। उसने ध्यान से देखा तो वो उनकी कंपनी का ग्रुप था और वो नंबर डॉक्टर मर्चेंट के ही थे। ये सब देखने के बाद चरित हैरानी से इशिका की तरफ देखने लगा। चरित कुछ बोलने के लायक नहीं रहा, वो हड़बड़ा गया था। उतने में लिफ्ट रुक गई और इशिका मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। चरित ने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, ओ माई गॉड इशिका ही डॉक्टर मर्चेंट है, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ कि उसे उसी की कंपनी में काम ऑफर कर रहा था। वो दिशांग राठौर के साथ यहाँ आई थी और मैंने उसे उनका ड्राइवर समझा। जल्द ही चरित तेज कदमों से चलते हुए इशिका के पीछे जाने लगा। नक्श ने क्वींस होटल का वीआईपी डाइनिंग एरिया बुक करवाया था। डाइनिंग एरिया में एक बड़ी सी टेबल लगी हुई थी जिस पर आराम से 40 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते थे। जैसे ही इशिका अंदर आई सब शांत हो गए। वो सभी थोड़े टाइम पहले ही ग्रेजुएट हुए थे तो इस वक्त अपने अपने करियर को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। इशिका को क्लास के कई लड़के पसंद करते थे लेकिन सिर्फ नक्श ही ऐसा था जो उससे बात कर सकता था। सारे उसे गौर से देखने लगे। इतनी सिंपल ड्रेस में भी वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। इशिका उनकी तरफ देख रही थी तभी चरित ने उसके लिए चेयर पीछे करके कहा, प्लीज आप बैठिए। इशिका चरित की बॉस थी और वो उसी हिसाब से बिहेव कर रहा था। चरित को इशिका के सामने देखकर वो लोग कुछ अलग ही समझने लगे थे। एक लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, चरित इशिका के साथ आया है, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? ऐसा कुछ नहीं है, हम बस एक साथ ही अंदर एंटर हुए थे, चरित ने हल्के गुस्से में कहा और जल्द ही उसके पास वाली चेयर पर बैठ गया था। वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, आखिर उसे अपनी बॉस डॉक्टर मर्चेंट से मिलने का मौका जो मिला था। इन सबके बीच एक और लड़की बैठी थी जो उनकी क्लासमेट थी, उसका नाम एलिस था। वो चरित को पसंद करती थी लेकिन दोनों फिलहाल सिर्फ दोस्त ही थे। इशिका को चरित के साथ देखकर गुस्से में उसने अपनी मुट्ठियां कस ली थी। एलिस से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने इशिका की तरफ देखकर सख्ती से कहा, इशिका मैंने आयशा से सुना कि तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली है, तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ हम सब अच्छी जॉब कर रहे हैं, मेरी कंपनी की रिसेप्शनिस्ट रिजाइन कर रही है, तुम कहो तो मैं तुम्हारे बारे में बात करूं। इशिका भले ही कोई जवाब ना दे लेकिन चरित चिढ़ गया था। वो तेज आवाज में बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम, डॉक्टर आई मीन इशिका एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लायक नहीं है, वो इतनी छोटी जॉब कैसे कर सकती है? ओ कम ऑन, तो तुम्हें लगता है कि रिसेप्शनिस्ट की जॉब एक छोटा काम है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? फिलहाल के लिए इशिका के पास कोई काम नहीं है तो रिसेप्शनिस्ट की जॉब उसके लिए काफी बड़ी रहेगी, ऊपर से वो दिखने में भी खूबसूरत है, इस तरह की जॉब में लुक्स मायने रखती है, एलिस ने सिर हिलाकर क्रूरता से कहा।
इससे पहले कि चरित गुस्से में इशिका का राज खोलता, इशिका ने खुद ही सख्ती से कहा, तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है एलिस, मैं खुद देख लूंगी। इशिका जानती थी कि यहां आने पर उसे यही सब चीजों का सामना करना पड़ेगा, ऊपर से आयशा भी बाकी लड़कियों को इशिका के खिलाफ भड़काती रहती थी। अगर प्रोफेसर मिलर का बर्थडे नहीं होता तो इशिका वहां कभी नहीं आती, वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। इशिका का बर्ताव देखकर वो लोग वापस उसके बारे में बातें करने लगे। एक लड़के ने कहा, तो इसका मतलब सब इसके बारे में बिल्कुल सही बात करते थे, ये घमंडी है और इसे हम सब छोटे लगते हैं। इशिका ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा लेकिन एलिस कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने इशिका से कहा, ठीक है तुम्हें काम नहीं चाहिए तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हम सब क्यों तुम्हारी परवाह कर रहे हैं, हम सब यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं और सबसे अच्छी जॉब चरित को मिली है, तुम सबको पता भी है वो डॉक्टर मर्चेंट के यहाँ काम कर रहा है। आसपास आए बाकी क्लासमेट चौंक चुके थे क्योंकि डॉक्टर मर्चेंट के साथ काम करने के लिए उन्होंने भी अप्लाई किया था लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। सब उससे अलग अलग सवाल पूछने लगे कि डॉक्टर मर्चेंट की उम्र क्या है, वो एक पुरुष है या महिला, उनका अगला प्रोजेक्ट क्या है। इशिका शांति से सबके सवालों को सुन रही थी लेकिन चरित इन सबसे काफी इरिटेट हो रहा था। चरित उन सबके सवालों से तंग आ गया था, ऊपर से पहले ही वो सब उसकी बॉस का काफी मजाक उड़ा चुके थे। उसने चिढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, अब बस भी करो, डॉक्टर मर्चेंट यहां से दूर नहीं है, तुम चाहो तो उनसे मिलकर खुद ये सवाल पूछ सकते हो। क्या मतलब डॉक्टर मर्चेंट यहां है, क्या वो आज यहां आने वाले हैं, एक लड़के ने जल्दी से पूछा। इससे पहले कि चरित इशिका का राज खोलता, इशिका ने उसकी तरफ सर्द निगाहों से देखा और ना में सिर हिला दिया था। इशिका की आइडेंटिटी अभी भी उन सबके लिए एक सीक्रेट थी जो वो फिलहाल तो रिवील बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। चरित ने बातचीत को बदलते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है कि तुम सब लोग मेहनत करोगे तो तुम्हें भी वहां काम मिल सकता है और तुम लोग उनसे पर्सनली मिलकर अपने सवालों के जवाब पा सकते हो, फिलहाल के लिए मुझे परेशान करना बंद करो। चरित ने काफी चालाकी से बातचीत का रुख बदल दिया था, धीरे धीरे करके उनके बाकी क्लासमेट भी आने लगे थे। इन सब में उनका ध्यान इशिका की तरफ से हट गया था तो उसने राहत की सांस ली। सबके आ जाने के बाद में आखिर में नक्श और आयशा एक साथ में आए। नक्श और आयशा को देखते ही एक लड़का चिल्लाकर बोला, फाइनली हमारे पार्टी के होस्ट आ गए हैं गाइज, मिस्टर राजवंश द हीरो ऑफ आर कॉलेज। उनकी बातें सुनकर आयशा को मन ही मन खुद पर काफी गर्व महसूस हो रहा था। आज इतनी शानदार पार्टी रखी गई थी तो वो नक्श की वजह से ही थी, वरना उस होटल के एक रूम से लेकर एक टाइम का खाना काफी महंगा था। हर कोई आकर उसकी चापलूसी करने में लग गया। नक्श को वो अंदर लेकर आए और उसे पूरे सम्मान के साथ बिठाया। उसके पास में आयशा आकर बैठ गई जो बिल्कुल किसी ट्रॉफी वाइफ की तरह लग रही थी। आते ही आयशा ने सबका हालचाल पूछा और मुस्कुराकर बोली, लगता है हमें आने में काफी देर हो गई, यहाँ तो अच्छा खासा डिस्कशन चल रहा था, वैसे किस बारे में बात कर रहे थे आप लोग? एक्चुअली हम इस बारे में बात कर रहे थे कि कौन इस वक्त करियर में क्या कर रहा है या किसे क्या जॉब मिली, एक लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। नक्श का इम्प्रेशन पहले ही वहां पर काफी अच्छा जा चुका था। उसने अपने अमीर होने का शो ऑफ करते हुए कहा, ये अच्छी बात है कि तुम लोगों को काम मिल गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई परेशान हो या जॉब नहीं मिल रही हो तो प्लीज मुझे बताना, मेरे लिए ये 2 मिनट का काम है। नक्श की बात सुनते ही एक लड़की हंसते हुए बोली, हम तो अभी सिर्फ अंडर ग्रेजुएट हैं, हमें अच्छे से पता है राजवंश एम्पायर में सिर्फ PhD और डॉक्टरेट्स को ही हायर किया जाता है। उस लड़की की बात सुनकर सब एक साथ हंसने लगे। तभी एलिस ने कहा, वैसे यहाँ कोई नहीं है जिसे काम ना मिला हो सिवाय एक इंसान के, तुम चाहो तो उसकी हेल्प कर सकते हो। आपको इशिका तो याद ही होगी ना मिस्टर राजवंश, उसे कोई जॉब नहीं मिली है तो आप उसे काम दे दीजिए। एलिस जानबूझकर इशिका की इंसल्ट करना चाहती थी। नक्श ने उसके साथ काफी टाइम बिताया था, लेकिन जब प्रपोज करने की बात आई तो उसने आयशा को प्रपोज किया था। पुरानी बातें याद दिलाकर एलिस ये साबित करना चाहती थी कि इशिका का कोई वजूद नहीं है। तो वहीं इससे अलग नक्श और आयशा के चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। वो दोनों जानते थे कि इशिका ही डॉक्टर मर्चेंट है और उसे काम की कोई जरूरत नहीं, उल्टा राजवंश एम्पायर को उसकी जरूरत है। इन सबके बीच नक्श की निगाहें इशिका की तरफ गई, जो बेपरवाही से वहां बैठी हुई थी। उसे देखकर नक्श ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बांध ली थी। एलिस जो कर रही थी वो चरित से अब सहन नहीं हो रहा था। वो गुस्से में बोला, एलिस बस भी करो, तुम अच्छे से जानती हो कि नक्श और इशिका के रिलेशन कैसे थे, तो ये मत बोलो कि मिस्टर राजवंश को इशिका याद है या नहीं। बाकी तुम बार बार इशिका की जॉब के बारे में जिक्र करके क्या साबित करना चाहती हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती, बस मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, एलिस ने मासूम बनते हुए कहा। उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, चरित ने चिढ़कर कहा। एलिस चरित को लाइक करती थी, लेकिन वो इशिका को सपोर्ट कर रहा था। ये उससे सहन नहीं हुआ। उसने एग्रेसिव होकर कहा, तुम इसका फेवर मत करो वरना सबको यही लगेगा कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। हम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा और ना ही कभी चल सकता है, मैं किसी भी लिहाज से इनके लायक नहीं हूँ, चरित ने जवाब दिया। हर कोई हैरानी से चरित की तरफ देखने लगा। वो किस तरह इशिका के लायक नहीं था, दिखने में भी ठीक ठाक था, ऊपर से उन सबके बीच मौजूद लोगों में उसे सबसे अच्छी जॉब मिली थी। उनमें से एक लड़के ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो ग्रो, माना कि ये बहुत खूबसूरत है पर तुम भी कम नहीं हो, तुम्हें डॉक्टर मर्चेंट के यहाँ काम मिला है। एलिस भी तुरंत बोली, ये सही कह रहा है, इशिका को अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड है, जबकि तुम और आयशा ही ऐसे लोग हो जो डॉक्टर मर्चेंट के साथ काम कर रहे हो। आयशा डॉक्टर मर्चेंट के अंडर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, उसने कभी इस बात का घमंड नहीं दिखाया। एलिस की बातें सुनकर इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आयशा ने उन सबको झूठ बोला था कि वो डॉक्टर मर्चेंट के अंडर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करेगी। उस वक्त तो आयशा भी नहीं जानती थी कि इशिका ही डॉक्टर मर्चेंट है। वहीं ये सब सुनकर चरित हैरानी से इशिका से बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, डॉक्टर मर्चेंट आप तो किसी भी स्टूडेंट को गाइड नहीं करते हो, फिर आपने आयशा को गाइड करने के लिए कैसे हाँ कहा? चरित भूल गया था इशिका की पहचान अभी तक सबके लिए सीक्रेट थी। अनजाने में चरित ने इशिका की सच्चाई उन सबके सामने रिवील कर ही दी थी। हर कोई आंखें फाड़कर इशिका की तरफ देखने लगा।